पृष्ठ संख्या 226, केदारनाथ सिंह, 1934 ईस्वी। प्रयोगवादी समकालीन हिंदी काव्य धारा के कवियों में केदारनाथ सिंह एक ऐसे कवि का नाम है जिसकी रचना प्रक्रिया और काव्य संवेदना अत्यंत गंभीर, लयमान और विचारोत्तेजक है। वह पहली बार एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमें तीसरा शतक में दिखाई पड़ते हैं। इसके एक वक्तव्य में केदारनाथ सिंह ने छायावादी कवि पंथ की तरह स्वीकार किया है कि प्रारंभ से ही प्रकृति ही उनके भावों का आलंबन रही है। अपने गीतों और कविताओं में उन्होंने इसे सप्रमाण प्रस्तुत किया है। उनकी कविता में ग्राम्य प्रकृति के विविध रूपों का दर्शन होता है। उसी वक्तव्य में उन्होंने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा, मैं मन को बराबर खुला रखने की कोशिश करता हूँ ताकि वह आसपास के जीवन की हल्की से हल्की आवाज़ को भी प्रतिध्वनित कर सके। इन्वर्टेड कॉमा बंद। कहना ना होगा कि यह केदारनाथ सिंह के काव्य प्रतिभा की ही शक्ति है जो चींटियों के रोने तक की आवाज़ को सुन सकती है। वस्तुतः उनकी कविता मनुष्य की दुर्दम जीवनी शक्ति और उसके संघर्षशील चेतना की पहचान है। कवि केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी को चकिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त कर वे बनारस आ गए और मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा यहीं प्राप्त की। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान उनके शोध का विषय रहा। 1952 से 53 ईस्वी के आसपास उनका विधिवत काव्य लेखन शुरू हुआ। पेशे से अध्यापक रहते हुए उन्होंने यूपी कॉलेज, वाराणसी, सेंट एंड्रूज कॉलेज, गोरखपुर, उदित नारायण कॉलेज, पडरौना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में कार्य किया। 1976 से 1999 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में अध्यापन का कार्य किया। कृतियाँ। कवि केदारनाथ सिंह की प्रकाशित काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल तथा प्रतिनिधि कविताएं, पृष्ठ संख्या 227। काव्य कृतियों के अतिरिक्त कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत तथा मेरे साक्षात्कार आदि उनकी गद्य कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अनुवाद कार्य भी किया है। श्री सिंह को अब तक अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मध्य प्रदेश, कुमरान आसान पुरस्कार केरल, दिनकर पुरस्कार बिहार, जीवन भारती सम्मान उड़ीसा तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। उनकी कृति अकाल में सारस 1989 ईस्वी पर उन्हें साहित्य अकादमी तथा संपूर्ण कृतित्व पर 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। केदारनाथ सिंह की कविताओं की भावभूमि समकालीन कवियों से एकदम भिन्न है। भाव ही नहीं बल्कि भाषा के स्तर पर भी यह भिन्नता उनमें देखी जा सकती है। एक पारिवारिक प्रश्न शीर्षक कविता में वे कहते हैं कि छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के विरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोप दूँ। केदार ने अपनी कविताओं में मनुष्य की नियत, उसकी पीड़ा, समय के दबाव, जीवन के ठहराव और खुद भोग कर अपना सा बना लिया है। इसीलिए उनकी कविताओं में आशा, आकांक्षा, प्यास, अतृप्ति, बेचैनी तथा अकेलेपन की उदासी अत्यंत गहरे रूप में देखी जाती है। पपीहा दिन, दुपहरिया, हम जो सोचते हैं, शाम, रात, सुबह, पांडुलिपियाँ, मंदिर, कलश, परछाइयाँ, चीखती चिड़िया आदि उनकी ऐसी ही कविताएं हैं। कविताओं के अतिरिक्त सौंदर्य के अत्यंत ही ताजे और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं केदार जी के गीतों में। भाव के धरातल पर भिन्नता के बावजूद इन गीतों में गहन आत्मीयता का भाव है। फागुन का गीत, धानों का गीत, बसंत गीत, पाठ नए आ गए, विदा गीत आदि ऐसे ही प्रसिद्ध गीत हैं। भाषा और बिंब योजना द्वारा जिनकी मनोभूमि लोक जीवन की भीनी खुशबू लिए हुए हमारे प्राणों में सहज ही समा जाती है। लय संगीतात्मकता और पृष्ठ संख्या 228, कोमल कांत पदावली इन गीतों की विशिष्टता है। अनुभूतियों की अंतः सलीला पूरी लयात्मकता के साथ अछूते बिंबों की कलात्मक रूपात्मकता में तराश कर प्रस्तुत करना केदार के काव्य कला की विशेषता है। इसी प्रकार प्रकृति का बहुरंगी चित्रण भी उनकी कविताओं में मिलता है। आज की कविता में जो आक्रोश, विद्रोह और विद्रोह और आक्रामकता की मुद्रा है वह केदार जी की कविताओं में नहीं मिलेगी। वह बहुत ही मित कथन और संयत शब्दों से अपना काम चलाते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण केदारनाथ सिंह अपनी पीढ़ी के एक अत्यंत ही संवेदनशील और समर्थ रचनाकार हैं। तालस्ताय और साइकिल उनकी ताज़ा तरीन कविताओं का ऐसा ही संकलन है जिसके भीतर वह उनका संवेदनशील रचनाकार झांक रहा है। तालस्ताय और साइकिल एक पांडुलिपियाँ, भूरी और उदास वह एक जर्जर सी पांडुलिपि थी, शायद पिछली सदी की। इतनी जर्जर थी वह कि मैंने डरते डरते पहला पन्ना खोला और क्या आप विश्वास करेंगे, मुझे उसके भीतर सुनाई पड़ी एक स्त्री की चीख जो किसी अक्षर के नीचे दबी पड़ी थी। पर सबसे रोमांचक अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मैं खड़ा था एक प्राचीन हस्तलेख के सामने और उसके भीतर से एक आवाज़ ने जैसे मुझे पहचाना और लगा जैसे पूछा हो, कैसे हो केदारनाथ। मैं हिला जरूर पर चकित नहीं हुआ क्योंकि चमत्कार नहीं होती पांडुलिपियाँ, वे बोलना बतियाना चाहती हैं। आदमी से अकेलेपन की यातना झेलनी पड़ती है उन्हें भी और कई बार सदियों तक। अक्सर सोचता हूँ वह क्या होता है उनकी स्याही में। पृष्ठ संख्या 230 की पन्ना पन्ना बिखर जाने के बाद भी वह सदियों तक ताकती रहती हैं, किसी राहुल की राह किसी तिब्बत के मठ में। मेरा अनुरोध है कहीं आप आएं और मेरे साथ चलें उस थकी पुरानी फटी उदास पांडुलिपियों की दुनिया में। आप पाएंगे वहाँ शब्दों ने पीस कर समय को बराबर कर दिया है और अब वहाँ सारा समय एक जगह इस तरह है कि आपको लगेगा जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को और शाकुंतल का हिरण कुछ कह रहा है पद्मावत के तोते से और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मन से बहस कर रहा है और रासों की कोई सबसे पुरानी प्रति धीरे धीरे गुनगुना रही है। किसी युवा कवि की अप्रकाशित कोई कविता, हैरान ना हो आप, यही आपसदारी जिंदा रखती है पांडुलिपियों को खो जाने के बाद भी। कहते हैं चीन के महाकवि ली फै लिखते थे कविताएं खजूर के पत्तों पर और बहा देते थे नदी में, फिर पानी जो उनका पहला पाठक होता था बढ़ा देता था उन्हें। पृष्ठ संख्या 231 किसी अगले पाठक की ओर इसी तरह बच जाती थी वह। हालांकि ध्यान से देखें तो सारी पांडुलिपियों पर कहीं न कहीं लगा होता है धूल के कॉपीराइट का एक मजबूत ठप्पा जिसके विरोध में कहीं सब छिपाए रखती हैं। किसी बेचैन हाथ की हल्की सी गर्माहट अपने पन्नों के भीतर के किसी चोर पन्ने में, पर मुझे लगता है इस समय वही खतरे में है। वही एक हाथ की जरा सी गर्माहट जिसे भीतर जुगाए हुए दुनिया की असंख्य गुमशुदा पांडुलिपियाँ कहीं आज भी पड़ी हैं किसी पेड़ की छाल, किसी नदी के कंठ, किसी जेल की दीवार या किसी पत्थर की स्मृति में। पृष्ठ संख्या 232 कविता संख्या 2 बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर। 3 दिन हुए मैंने बर्लिन में देखे नहीं कवे, लेकिन क्यों कवे, इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कवे इस सुंदर शहर में जबकि आसमान उतना ही नीला है बिना कौओं के भी। यह एक छोटा सा होटल है जहाँ हम कुछ हिंद पाक लेखक ठहरे हैं साथ साथ और हमारे पासपोर्ट चाहे तो कहते हो यहाँ हम में से हर एक थोड़ा थोड़ा हिंद है थोड़ा थोड़ा पाक। हम साथ साथ खाते हैं पीते हैं साथ साथ, हंसते हंसते कभी कभी हो जाते हैं उदास भी। यह साथ साथ हंसना उदास होना साथ साथ एक दुर्लभ अनुभव है एक विदेशी जमीन पर। वहाँ बाहर मेरी खिड़की से दिखते हैं दो वायुयान जैसे दो कबूतर, दो महायुद्ध वहाँ बेंचों पर बैठे वृद्धों की स्मृति में ठाए ठाए करते हुए एक ताज़ा चुंबन जिनकी होठों से गिरकर वहाँ घास पर पड़ा हुआ। पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी दीवार भी। पृष्ठ संख्या 233 और देखता हूँ कि उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री, न जाने कब से कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ कि रुकने ही देता नहीं उसे, और वह बार बार आ रही है जा रही है उधर से इधर और इधर से उधर। इधर एक छोटी सी महफिल में सुन रहे हैं हम अहमद फराज को कोई ताजा गजल सुना रहे हैं। वह झूम रहे हैं सब, झूम रहा हूँ मैं भी, पर मेरी आंखें खिड़की के पार बर्लिन की उस टूटी दीवार पर टिकी हैं जहाँ वह पागल स्त्री गजल को चीरती हुई लगाए जा रही है अब भी चक्कर पर चक्कर। जैसे कोई बिजली कौन जाए, एक दबी हुई स्मृति झकझोर जाती है मुझे, और मुझे लगता है कहीं मेरे भीतर भी है एक पागल स्त्री जो दरवाजों को पीटती और दीवारों को खुरचती हुई उसी तरह लगा रही है चक्कर मेरे उपमहाद्वीप के विशाल नक्शे में ना जाने कब से। पृष्ठ संख्या 234। देखता हूँ कि गजल के बीच में कोई मिसरा भूल रहे हैं अहमद फराज। पिछले शेर और अगले के बीच का एक अजब सा सन्नाटा भर गया है कमरे में, पर मुझे लगता है मेरे भीतर कि वह पागल स्त्री अब एक दीवार के आगे खड़ी है और चीख रही है, यह दीवार, आखिर यह दीवार कब टूटेगी? इतने बरस हुए गजलों के भरे इस महाद्वीप में मुझे एक भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार है। 3, समूह गायन। अंधेरे में गा रहे थे वह मशाल जलाकर, कहना कठिन था कि जो छन रही थी रोशनी अंधेरे के छिद्रों से वह उनके कंठ में आ रही थी यह मशाल से, पर जल दोनों रहे थे। उनके गाने में पत्थरों के टूटने की आवाजें थी और एक नदी के सूखने की सांसाएं, एक दबी हुई रुलाई और एक गेहूं की ठनकार एक साथ भरी थी उनके गीतों में। पृष्ठ संख्या 235, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत था जिसमें जितना उल्लास था उतना ही गाढ़ा अवसाद और एक गहरी सी तोड़फोड़ आत्मा के भीतर और सारे वायुमंडल में। शायद वह गा रहे थे किसी देवता के लिए जो किसी वृक्ष में रहता था, शायद पानी के लिए जो किसी देवता के पास था, शायद अन्न के लिए जो खुद एक देवता था, शायद कुछ नहीं सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए गा रहे थे वह जो उनकी थी और इन मुश्किल दिनों में भी उनके कंठ में अब भी बची हुई थी। वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी जो अपनी उठान में दूर से लगती थी देवपम, और उसी की बगल में एक एक युवा आवाज़ की तड़प की सुरीली जो सारी आवाज़ों पर तैर रही थी, और कहीं उसी के आसपास एक कड़क आवाज़ जरा भारी सी थी जो अपने हल्के बेसुरेपन में। पृष्ठ संख्या 236। इतनी भी तन्मय जैसे कि बचाए हुए हो सारी आवाज़ों को अतल में गिरने से। उसे गाने में कोई भी आवाज़ किसी भी आवाज़ से अलग नहीं थी, पर हर गाने वाला जितना समूह में था उतना ही अकेला, और जो जितना अकेला था उतनी ही गहरी और उदात्त लगती थी उसकी आवाज़ सारे संगीत में एक विलक्षण हलचल की सृष्टि करती हुई। कविता संख्या 4, तलस्टॉय और साइकिल। आपने कभी सोचा है महान ताज में क्यों नहीं रही वह पहली सी चमक, वह पहली सी गूंज रोम के घंटे में, वह आश्चर्य पहला सा दीवार में चीन की? पर क्यों क्यों आपकी गली से गुजरती हुई एक जर्जर साइकिल की छोटी सी घंटी में वही जादू है जो उस दिन था जब तालस्ताय ने पहले पहल देखी थी साइकिल। पृष्ठ संख्या 237। और तालस्ताय चूंकि तालस्ताय थे इसलिए वह एक उदास घोड़े से कर सकते थे बातें, कर सकते थे कोशिश एक रंगीन चित्र को कागज से उठाकर जेब में रखने की, दे सकते थे आदेश समुद्र की लहरों को एक अभय मुद्रा में साथ उठकर, पर तालस्ताय गिर सकते थे साइकिल से साइकिल सीखते हुए यासनाया पोलियाना की उस कच्ची सड़क पर। उस दिन जो साइकिल ने धूल झाड़ कर इतिहास में प्रवेश किया, तो जैसे आज तक हर आदमी के पीछे पीछे घंटी बजाती हुई उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है।